आता और होता है, इनमें कभी बेवसूली होती है, कमी बेसी होती है, तो एक दूसरे को तकलीफ होती है। तो इसलिए कुरान और हदीस की रोशनी में ये बातें पेश की जा रही हैं। नंबर 5, बाज आदमी बिला जरूरत दूसरे शख्स की पुश्त के पीछे बैठ जाते हैं, इससे दिल उलझता है, या पुश्त के पीछे नमाज की नीयत बांध लेते हैं। सो अगर वो अपनी जगह से उठना चाहे तो पीछे वाले की वजह से उठ नहीं सकता और महबूस हो जाता है और इससे तंगी होती है। क्या फरमा रहे हजरत खानी रहमतुल्लाह अलैह, बाज आदमी बिला जरूरत दूसरे शख्स की पुश्त के पीछे बैठ जाते। अब पीछे बैठ गए, इससे दिल उलझता है, अब बेकरारी रहती है, अब ये क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, या पुश्त के पीछे नमाज की नीयत बांध लेते हैं। अब हम उठकर जाना चाहें तो वो पीछे खड़े हो गए हैं, जबकि और जगह आजू बाजू है, वो दूसरी जगह भी खड़ सकते हैं। सो अगर वो अपनी जगह से उठना चाहे तो पीछे वाले की वजह से उठ नहीं सकता और महबूस हो जाता है, गोया के कैद में आ जाता है, पाबंदी में, और इससे तंगी होती। खुद हजरत अपना एक वाकया हजरत सुनाते हैं कि एक तालिब इल्म जो है हजरत के पीछे नमाज सुन्नत में खड़ गया, अब बहुत देर हो गई, अब हजरत को जाना है तो जा भी नहीं पा रहे हैं। तो हजरत चूंकि हर बात में इस्लाह कहते थे, हजरत दूसरे दिन उसके पीछे नीयत बांध के खड़े हो और बड़ी लंबी नमाज पढ़ने लगे। अब उसको बात समझ में आ गई, आहा ये किस्सा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ। इसी से मिलती जुलती और एक चीज भी हजरत बयान फरमा रहे, बाज लोग आखिरी सफ में खड़ जाते हैं। अब अगर आगे से कोई गुजरना चाहे तो नमाजी के आगे से गुजरना होगा, और पीछे से गुजरना चाहे तो गुजर भी नहीं सकता है, अब बेचारा परेशान होता रहता है। तो वैसी एक बात हजरत फरमा रहे, बाज़े आदमी मस्जिद में ऐसी जगह नियत बांधते हैं कि गुजरने वालों का रास्ता बंद हो जाता है, मसलन दर के सामने या दीवार मशरिकी से बिल्कुल मिलकर। अब जैसे वो दीवार मशरिकी है, ये मगरिब की दीवार है, वो मशरिकी दीवार है, या दरवाजे के सामने ऐसी जगह खड़ जाते हैं कि बिल्कुल मिलकर न पुश्त की तरफ से निकलने की गुंजाइश रहे और न सामने से न आगे से गुजर सकते हैं, गुजरेंगे तो गुनाह होगा, पीछे से गुजरना चाहे तो पीछे भी नहीं गुजर सकते। तो फरमाते हैं हजरत कि बिल्कुल मिलकर न पुश्त की तरफ से निकलने की गुंजाइश रहे और न सामने से बवजह गुनाह के गुजर सके। सो ऐसा न करें, बल्कि दीवार किबला के करीब एक गोशे में नमाज पढ़े। अब ये किबले की दीवार है, इधर इस तरफ कोने में, उस तरफ कोने में, अब खड़ा हो जाए। अब इस तरफ अगर कोई खड़ा हो, एक घंटा भी नमाज पढ़े, तो उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं हो रही, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। अदब नंबर 7, किसी के पास जाओ तो सलाम से या कलाम से या रूबरू बैठने से गर्ज किसी तरह से उसको अपने आने की खबर दो, आप आए हैं ये उसे मालूम हो जाए, सलाम का मौका हो सलाम कर लो, कोई इशारा करना हो इशारा कर लीजिए, और बिदों इत्तला के आड़ में ऐसी जगह मत बैठो कि उसको तुम्हारे आने की खबर ना हो। ऐसी जगह बैठ गए उनको मालूम नहीं। अब बैठकर वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, अब तुम सब सुन रहे हो। बाज वक्त इंसान ऐसी बात ऐसा काम करना चाहता है जो दूसरे को मालूम ना हो। मिसाल के तौर पर बीवी की तबीयत खराब है, अब वो परेशान है, अब वो किसी से कर्ज लेना चाह रहा है, कर्ज की बात कर रहा है, या बड़ी बीमारी है तो बीमारी के सिलसिले में किसी से वो मालूमात कर रहा है, या कोई ऐसी चीज बच्ची का रिश्ता है मिसाल के तौर पर, या कोई दूसरा मामला है, वो इतना जल्दी दूसरों को मालूम कराना नहीं चाहता, तो ऐसी बात वो फोन से या किसी से कर रहा है। अब तुम जाकर एक तरफ बैठ गए और उसकी पूरी बात सुन ले, जब उसे मालूम हो कि तुम बैठे हो तो यकीनन उसको तकलीफ होगी। तो फरमाया किसी के पास जाओ तो सलाम या कलाम से या रूबरू बैठने से गर्ज किसी तरह से उसको अपने आने की खबर दो, और बिनो इत्तला के आड़ में ऐसी जगह मत बैठो कि उसको तुम्हारे आने की खबर ना हो, क्योंकि शायद वो कोई ऐसी बात करना चाहे जिस पर तुमको मुत्तला न करना चाहे। तो बिनो उसकी रजा के उसके राज पर मुत्तला होना बुरी बात है, वो आके उसकी राज की बात तुम मालूम कर रहे। बल्कि अगर किसी बात के वक्त ये एहतमाल हो कि बेखबरी के गुमान में वो बात हो रही है तो तुम फौरन वहां से जुदा हो जाओ। अब हजरत यहां तक भी फरमा रहे हैं कि तुम बैठ गए वो बात कर रहा है और तुम्हें अंदाजा हो गया कि ये बात ऐसी है कि मेरे यहां मौजूद रहने की बात अगर उसको मालूम हो तो गरांग गुजरे, तो खुद से उड़ जाओ वहां से चले जाओ, तो फौरन वहां से जुदा हो जाओ। या अगर तुमको सोता समझकर ऐसी बात करने लगे तो फौरन अपना बेदार होना जाहिर कर दो अल्लाह पर। यहां तक भी फरमा रहे तुम लेटे हुए हो सोए हुए हो समझकर वो कोई राज की बात कर रहा है और तुम सुन रहे हो, तो हजरत फरमाते हैं कि तुम इस तरीके से हरकत करो कि उसे मालूम हो जाए कि ये सोया हुआ नहीं है जागा हुआ, ताकि वो अपने राज की बात यहां न करे या तुम्हारे सामने न करे। तो फरमा रहे हजरत अलबत्ता अगर तुम्हारे या किसी और मुसलमान की जरर रसानी की कोई बात होती हो तो उसको हर तरह सुन लेना दुरुस्त है, ताकि हिफाजत जरर से मुमकिन हो। हाँ कोई तकलीफ की बात है हमारे सिलसिले में या दूसरों के सिलसिले में तो उसके सुनने में कोई हर्ज नहीं है। अदब नंबर 9, अगर किसी बुजुर्ग का जूता उठाना चाहो तो जिस वक्त वो पांव से निकाल रहे हो उस वक्त हाथ में मत लो। ये भी होता है, बाज लोग अभी चप्पल निकाल भी नहीं पाते, वो खींचना शुरू कर देते हैं, तो हजरत फरमाते हैं इससे बाज औकात दूसरा आदमी गिर पड़ता है, उनको तकलीफ होती है। अच्छा, निकालने के बाद उठाना है, जज्बा है, खिदमत का शौक है तो उठाएं, लेकिन उठाने के बाद भी कहाँ रखते हैं, या तो मालूम कराएं या नहीं तो खुद ये उनके सामने उस जगह रखें। वरना आमतौर से प्रोग्रामों में चप्पल को उठाकर बहुत मोहब्बत से ले लेता है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो गायब नजर आता है। अब इधर सफर में निकलना होता है, सवारी तैयार रहती है और भीड़ इतनी रहती है कि वो जूता कहाँ है किधर है मालूम नहीं पड़ता। अब इधर ये परेशान हो रहे हैं और दूसरे लोग खामखा दूसरों के जूते ला ला कर हजरत ये क्या वो क्या वहां से उठा उठा कर ला कर यहां बताकर यहां रख देते। अब बेचारा दूसरा आदमी जो पहली जगह रखा था वो वहां आकर तलाश करना शुरू करेगा, तो उसको भी परेशानी है, हजरत को भी परेशानी है। तो इसलिए उठाने के भी आदाब हजरत सिखा रहे, तो उठाते हुए भी सलीके के साथ और रखते हुए भी सलीके के साथ रखें। अदब नंबर 9-10, बाज औकात बाज खिदमत दूसरे से लेना पसंद नहीं करता, सो ऐसी खिदमत पर इसरार न करना चाहिए। कि खुद मखदूम को तकलीफ होती है, और ये बात उस मखदूम की सरीह ममानात या फराइन से मालूम होती है। बाद वक्त कोई खिदमत ऐसी होती है वो दूसरों से लेना नहीं चाहता, उसको परेशानी रहती है, तो ऐसे वक्त में इसरार नहीं करना चाहिए। हमारे हजरत एक हमको जमात फारसी पढ़ाए, हजरत मौलाना कमाली वेलूरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम बहुत सी किताबों में चहल सबक आरास्तान वगैरह में पीछे आता है, कमाली वेलूरी हमारे उस्ताद। बहुत बड़ी उम्र थी उनकी हजरत की, जब हम पढ़ने गए थे तो 90 से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई थी, और हजरत ने उस साल के बाद हमारा जो फारसी का साल था इस्तीफ़ा दे दिया कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब मैं खिदमत नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद उस कई साल तक बाहयात रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी उम्र थी हजरत की, सादी दकन कहते थे लोग उनको, फारसी के बड़े माहिर थे, अशार बर वक्त बनाते थे, मेहमानों की आमद पर इस्तिक़बालिया कलिमात वो अशार में लिखकर पढ़ते थे, खुद पढ़ते थे, बहुत ज़ोर से पढ़ेंगे, बहुत जोश से पढ़ेंगे। तो हजरत खुद फरमाए, एक जगह मैं गया और मेरा क़याम था, तो मैं वो कमरे से इजाज़त चाह रहा हूँ कि मैं ज़रा बाजू जाकर आता हूँ, ज़रूरत से जाता हूँ। अब वो मेज़बान जो है बार बार कह रहे हैं, हजरत वो ज़रूरत क्या है, हम ना बोलो हमें पूरी कर दें। हजरत बोले, नहीं भाई मेरी ज़रूरत है, मैं पूरी करके आता हूँ। अब वो बोले, नहीं हजरत अब बोलो क्या ज़रूरत है, हमें पूरी कर। दो तीन बार हजरत इशारे से बोले, उसके बाद बोले, भाई मुझे पाखाना आ रहा है, मुझे पेशाब आ रहा है, मेरी ज़रूरत है तुम कैसे पूरी करोगे, इसलिए मुझे छोड़ो, मैं जाकर मेरी ज़रूरत पूरी करके आता हूँ। अब इस तरीके से कोई बात हो तो समझ लेना चाहिए कि वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, जाहिर करना नहीं चाह रहे हैं, समझ। इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर सलीके से खिदमत की जाए तो खुशी होती है, इसमें अगर बेढंगापन अपनाया जाए तो उससे तकलीफ होती है। तो ये बोलने को छोटी चीज़ें हुई, लेकिन सीरत का अगर हम मुताला करें तो हजरत साहब रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे को पहचान कर आपकी इस वक्त क्या चाहत है, क्या ज़रूरत है, उसको मालूम करके खिदमत की, और ऐसी दुआएं पाए कि उनकी दुनिया और आखिरत जो है संवर गई, रोशन हो गई। एक साहबी रसूल छोटी उम्र के हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत से तशरीफ़ ले गए थे, वही ज़रूरत जो अब मैं बोला, तो वापस आए तो देखा लोटे में पानी रखा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त कीजिए कौन रखे, तो बोले या रसूलल्लाह मैं रखा हूँ। क्यों या रसूलल्लाह, आपकी आदत मुबारक है कि आप ज़रूरत से फारिग होकर आते ही वजू करते हैं, इसलिए आपकी ये ज़रूरत की चीज़ है, मैं वो फराहम किया। बहुत खुश हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने दिली दुआ दी उनको, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह अपनी किताब का इल्म उसको अता फरमाए, इस बच्चे को और रईसुल मुफस्सिरीन बने, क़यामत तक कोई भी तफसीर लिखे तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर से बेनियाज होकर, मुस्तग़नी होकर नहीं लिख सकता। अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म, इतना बड़ा मकाम और कुरान की दौलत से उनको नवाजा। इस तरीके से छोटी छोटी खिदमतों के ज़रिए से दिली दुआएँ हमको मिल जाती हैं, अल्लाह ताला मंशे और मर्जी को जानकर खिदमत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानल्लाहि वबिहमदिही सुभानकल्लाहु वबिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। यहाँ तमिल किताबें रखी हुई हैं, इसमें एक किताब है एक दिन एक आयत की तशरीह तफसीर, अच्छे मजामीन हैं, और इसके अलावा जवाहिरुल कुरान हमारे वाकयात से जो तफसीर लिखी गई है वो भी है। तो तमिल अहबाब थोड़ा वक्त निकाल कर उसमें से कुछ कुछ हिस्सा पढ़ें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह जाना। और भी किताबें उर्दू की हैं, छोटी छोटी किताबें हैं उर्दू के अहबाब, वो उससे भी फ़ायदा उठाएँ पढ़ें। तमिल वाले हजरत तमिल उर्दू किताब का अगर तमिल तर्जमा करें, उसका खुलासा तैयार करें, तो इंशाल्लाह बाद में आने वालों को भी फ़ायदा होगा और दूसरों लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंच सकती हैं इंशाल्लाह। अल्लाह आसान फरमाए, मामले को आसान। सुभान अल्लाह।